लाल रंग का एन अक्षर रंगों के स्पेक्ट्रम में प्रकट होता है।
हिंदुस्तान का मुंबई शहर, दौड़ती लोकल ट्रेन्स और भीड़ भाड़, स्टेशन से बाहर आते जाते हर उम्र के लोग। स्क्रीन पर लिखा है बैंडस्टैंड प्रोमेनाड बांद्रा मुंबई। सड़क के किनारे बहुत जबरदस्त भीड़ है। एक आलिशान घर के अंदर डेविड लेटरमैन शाहरुख खान और उनके छोटे बेटे से हाथ मिला रहे हैं।
यस सर, नाइस टू मीट। हाय अबराम, कैसे हो? तुमसे मिलकर खुशी हुई। आपका घर बहुत सुंदर है।
आपने बाहर भीड़ का जोश देखा?
अंदर आते हुए देखा, मेरे ख्याल से वो दोपहर से बाहर खड़े।
भीड़ में लोग हाथ हिलाते, फोटो और वीडियो लेते दिख रहे हैं।
Come on along, Dave.
खान लेटरमैन के साथ बाहर आते हैं। भीड़ आगे बढ़ने लगती है। कुछ लोग पेड़ पर चढ़कर देख रहे हैं। भीड़ उमड़ती है, कैमरे तैयार हैं। घर के सामने बने एक जंगले के ऊपर शाहरुख खान चढ़ जाते हैं और सामने जमा भीड़ की तरफ हाथ हिलाते फ्लाइंग किसेस और थम्स अप का इशारा करते हैं। खान का 6 साल का बेटा अबराम बाहर आता है। खान उसे जंगले पर अपने साथ खड़ा करके भीड़ की तरफ हाथ हिलाते हैं। लेटरमैन भी बाहर आते हैं और विशाल भीड़ की तरफ चकित होकर देखते हैं। खान फ्लाइंग किसेस देते हैं। लेटरमैन घर के आंगन में लौटते हैं।
वाओ, ऐसा मेरे घर के बाहर तो कभी नहीं हुआ।
क्रेडिट्स उभरने लगते हैं। स्टेज पर लेटरमैन दर्शकों के सामने आते हैं। स्क्रीन पर लिखा है अ नेटफ्लिक्स ओरिजिनल सीरीज, अ 0.0 एंड वर्ल्ड वाइड पैंस प्रोडक्शन। एनिमेशन। स्टेज पर नीले बैकग्राउंड के आगे 2 कुर्सियां हैं, एक पर कोई बैठा है। टाइटल लिखा है माय नेक्स्ट गेस्ट विद डेविड लेटरमैन एंड शाहरुख खान। न्यूयॉर्क सिटी में एक बिल्डिंग के आगे लोगों की लंबी कतार है। एक महिला के हाथ में टिकट्स हैं। हॉल के अंदर डेविड लेटरमैन स्टेज के पीछे खड़े हैं।
Oh my goodness.
आपके सामने आ रहे हैं डेविड लेटरमैन।
स्टेज पर लेदर की 2 कुर्सियां रखी हैं।
अब आएगा मजा।
लेटरमैन ने ब्लेजर पहना है और उनकी सफेद दाढ़ी है।
Thank you very much, ladies and gentlemen.
आप लोग नहीं जानते, या आप शायद जानते हो, मगर ये सब मैं नहीं जानता। ये सब हमारे लिए ये सोचना भी इम्पॉसिबल है। क्या ये आप लोगों को कुछ समझ आ रहा है?
Yes.
बड़े समझदार हैं आप सब। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज रात के हमारे मेहमान हैं दरअसल वो आ नहीं सके, मगर
लेडीज जेंटलमैन, प्लीज वेलकम शाहरुख खान।
खान सफेद शर्ट, डार्क सूट और वेस्ट कोट में स्टेज पर आते हैं। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट है। वो हाथ जोड़कर दर्शकों का अभिवादन करते हैं। वो लेटरमैन से हाथ मिलाते हैं और दोनों गले मिलते हैं। दर्शकों के सामने आकर खान उनकी तरफ फ्लाइंग किसेस भेजते हैं। खान और लेटरमैन कुर्सियों पर बैठते हैं। खान मुस्कुराकर हाथ जोड़कर दर्शकों की तरफ देखते हैं।
मुझे लगता है
लेटरमैन अपनी कलाई देखते हैं मानो टाइम देख रहे हों। खान दर्शकों से शांत रहने का इशारा करते हैं।
थैंक यू,
सारा वक्त तो यही निकल गया।
खान मुस्कुराते हैं।
मुझे बेहद खुशी है मैं आपसे मिला, आपकी लाइफ के बारे में जाना और जाना कि आप लगभग 3.5 बिलियन लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। ये नंबर मैंने सही कहा? 350 अरब
शायद टाइम मैगजीन या न्यूज वीक में ऐसा कुछ लिखा गया था, और उसमें ये भी लिखा गया था कि मैं इंडिया का टॉम क्रूज हूँ। तो ये दोनों बातें मेरे दिमाग में टक गई। तो अब मैं जब भी अमेरिका आता हूँ, मुझसे कोई पूछता है कि आप कैसे स्टार हो, तो मैं कहता हूँ टॉम जैसा। और जब पूछते हैं कि आपके कितने फैंस हैं, तो मैं न्यूज़वीक का आर्टिकल दिखाता हूं कि 350 अरब। अब मुझे पता नहीं ये सच है कि झूठ है। वैसे हम सब कॉन्टिनेंट वाले बच्चे बहुत पैदा करते हैं, तो वैसे ही हमारी तादाद बहुत सारी है, लॉट्स ऑफ अस।
ये दुनिया की 43% पॉपुलेशन हुई, मतलब कि कुछ लाख इधर उधर हो भी जाए तो भी ये काफी इंप्रेसिव है। आपको स्टार्डम पसंद है और आपको उसके तहत सब कुछ पसंद है। आपका बचपन, आपकी शुरुआत दिल्ली में हुई?
हाँ, मैंने बहुत बचपन में ही एक्टिंग शुरू की। एक प्ले के लिए मुझे बुलाया गया था जिसमें उन्होंने बताया कि 90 लड़कियां होंगी और उन्हें 10 लड़के चाहिए। तभी मैंने सोच लिया कि बस यही काम करना चाहिए मुझे, और कुछ करने की क्या जरूरत। फिर मैं हमारे मोहल्ले की रामलीला में भी भाग लेता था, जहाँ पे रामायण की कहानी सुनाई जाती है मोहल्ले मोहल्ले गली गलियों में। और उसमें मुझे जो रोल मिला वो वानर सेना का था, तो हनुमान जी की जो सेना थी उसमें मैं बंदर था। तो हनुमान जी स्टेज पर आते थे और कहते थे बोल सियापति रामचंद्र की, और मैं कहता था।
लेटरमैन भी तालियां बजाने लगते हैं।
मैं भी वही कहता।
मेरी यही लाइन्स थी जो ऑडियंस ने अभी बोली। मुझे उछल कर जय जय कहना होता था, और मैं अपनी पूंछ लिए स्टेज पर उछलता रहता था। मेरे हिसाब से मुझे सही लोग सही मौके पर बस मिलते रहे।
क्या किसी और कामयाबी से आपकी हसरत पूरी होती?
आपका मतलब मैं अगर किसी और काम में कामयाबी पा लेता?
नहीं नहीं, अगर इंडिया में ही आप एक्टर ही होते लेकिन 350 अरब लोग आपके फैन न होते, तब भी क्या आप एक आम एक्टर होकर खुश होते?
नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है। नहीं नहीं, मैं
ये स्टार बनो या घर जाओ।
मैं ये नहीं कहना चाह रहा था। एक्चुअली मेरा मतलब ये है कि मैं 25-30 साल से काम कर रहा हूं, और इस दौरान में कहीं बीच में मुझे लगने लगा कि मुझ में उतना हुनर है ही नहीं जितना मैं समझता हूं, उससे आधा भी नहीं है। तो मुझे लगा कि बेटा अगर हुनर नहीं है तो लोगों के दिलों में जो जगह बन गई है उसी को बरकरार रख लो और उसी को संभाल कर रख लो, उसमें ही मेरी भलाई है। सो मैं कहना चाहूँगा कि अब मेरा ये मानना है कि 350 अरब लोग मुझे दिल से सच्चे दिल से प्यार करते हैं, क्योंकि अगर सिर्फ टैलेंट और हुनर की बात होती तो इतना प्यार नहीं मिलता।
आपकी माँ की बात करें जो बचपन में आपको एक फिल्म दिखाने ले गई, कुछ रिश्वत वगैरह का मामला हुआ था ना?
बिल्कुल, हमारे यहाँ चलता है ऐसा। हाँ, नहीं नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ, हम बिल्कुल नहीं बिक सकते, नेवर। एक्चुअली सच्चाई ये थी कि मैं आयरिश मिशनरी स्कूल में पढ़ता था, तो मेरी हिंदी कमज़ोर थी। मेरी माँ ने कहा कि अगर तुम हिंदी में 10 में से 10 मार्क्स ले आओगे एग्जाम में फुल मार्क्स ले आओगे तो मैं तुम्हें हिंदी फिल्म हॉल में दिखाने ले जाऊंगी, और हम इतने अमीर नहीं थे, हॉल में जाकर हिंदी पिक्चर देखना बहुत बड़ी बात थी। तो मैं पढ़ा 10 के 10 शब्द पढ़ा एक को छोड़कर, फिर एग्जाम में गया, दूसरे लड़के के पेपर में देख के मैंने कॉपी कर लिया, और ये बात मैं बेझिझक कह सकता हूँ, मेरी मम्मी भी समझ ही जाती आखिर माँ है। और मुझे 10 में से 10 मार्क्स मिल गए, और मैंने अपनी पहली हिंदी फिल्म हॉल में देख ली।
ये बताइए मुझे, आपके इस खुलासे से, इस जबरदस्त खुलासे से आपके 350 अरब फैंस क्या सोचेंगे? क्या उनकी संख्या कम नहीं हो जाएगी?
नहीं, बिल्कुल नहीं। तो जैसे अमरीकी करते हैं, टीवी पे आके पब्लिकली माफी मांग लूंगा, सब माफ कर देंगे।
आपका करियर टीवी से शुरू हुआ, वो भी दिल्ली में, क्या टीवी इंडस्ट्री वही थी?
नहीं, टीवी तभी आया था हमारे देश में, अर्ली 90s में।
तब किस किस्म के शोज देखने को मिला करते थे?
नहीं कुछ नहीं, बिल्कुल
क्या वो शोज कुछ नहीं।
एक्चुअली हमारे पास तब एक सरकारी चैनल था, यहाँ पे लोगों की उम्र इतनी है या नहीं उन्हें याद है कि नहीं मुझे पता, बट एक दो ही प्रोग्राम आते थे, कुछ डॉक्यूमेंट्रीज, एक बड़ा किसानों के ऊपर प्रोग्राम आता था कृषि दर्शन, जिसमें खेती बाड़ी के बारे में बताया जाता था। और ऐसा कोई एंटरटेनिंग प्राइम टाइम टीवी नहीं था जैसे अमेरिका में होता है, वो अर्ली 90s में आया, और उसी में मुझे मौका मिला एक सीरीज करने का, फौजी, जिसमें जवान लड़के लड़कियों की कहानी फौज में दिखाई गई थी, और वो लोगों को बहुत पसंद आई, और उसी से मैं थोड़ा बहुत स्टार टाइप बन गया।
और स्कूल में क्या पढ़ाई की थी आपने?
स्कूल में मैंने साइंस की, ये सोचकर कि मैं इंजीनियर बनूंगा, फिर लगा इंजीनियर नहीं बन सकता तो मैं एक्टर बन गया। एक्चुअली इस इंटरव्यू में बहुत बार ऐसा लगेगा कि मैं कुछ नहीं बन सका तो एक्टर बन गया। फिर मैंने कॉलेज में इकोनॉमिक्स की, उसके बाद मास कम्युनिकेशन किया, मास्टर्स किया, जर्नलिज्म का कोर्स किया।
क्या बात है,
हाँ, उस वक्त मुझे पता नहीं था मुझे क्या बनना है, क्या करना है। मेरे पिताजी कहा करते थे, अगर सचमुच में पढ़ा लिखा होना है तो न्यूज़पेपर का हर पन्ना समझ में आना चाहिए। ये बात मैंने बहुत बहुत फॉलो की, लेकिन कमाल यह है कि 35 साल के बाद मुझे आजकल के अखबारों में कुछ समझ में नहीं आता।
चलिए आपके बच्चों के बारे में बात करते हैं। बड़े हो गए, कॉलेज जाते हैं, सही है ना?
हाँ, मेरा बेटा यहाँ यूएससी एलए में पढ़ रहा है, फिल्म मेकिंग सीख रहा है, 21 साल का है। मेरी बेटी 19 की है और एनवाईयू में पढ़ने आ रही है, न्यूयॉर्क में।
ओह, यहाँ फिल्म की पढ़ाई?
हाँ, माय सन डजंट वांट टू एक्ट। लेकिन मेरा बेटा जो है फिल्मों में काम नहीं करना चाहता, एक्टिंग नहीं करना चाहता। लेकिन इंडिया में ऐसा चलन है कि एक्टर का बेटा एक्टर ही बनेगा, हैंडसम है, लंबा है, पर मुझे लगता भी नहीं वो करना चाहता है या नहीं, और उसे ये बात का एहसास है, लेकिन लिखता बहुत अच्छा है।
क्या ये बात आपने उसे बताई?
नहीं नहीं नहीं, मुझे लगता है एक्टर बनने का, एक्टर बनने की जो चाह है वो अंदर से आनी चाहिए, एक जज्बा होना चाहिए, जोश होना चाहिए, और फिर ये दिल करना चाहिए कि ये हुनर को जाकर मैं कहीं सीखूं।
अच्छा,
लेकिन उसने खुद ही ये बात मुझे बताई कि मैं एक्टर नहीं बनना चाहता, क्योंकि अगर मैं एक्टर बना तो हमेशा मेरी तुलना आपसे की जाएगी,
जाहिर सी बात,
और अगर मैंने अच्छा किया तो लोग कहेंगे हाँ इसका अच्छा करना तो लाजमी है, एक्टर का बेटा है, उसके हुनर की कदर नहीं होगी, ये सब बातें उसके जीन्स पे डाल दी जाएंगी, और अगर वो बुरा करेगा तो लोग कहेंगे अरे देखो यार बाप कितनी अच्छी एक्टिंग करता है, इसको देखो। तो वो इस जगह पर नहीं होना चाहता।
अब आपने भी तो स्टैंडर्ड इतना ऊंचा सेट किया है।
नहीं, ऐसा नहीं है।
तो वैसे आप घर पर एक बिल्कुल अलग इंसान है, राइट?
बिल्कुल। एक्चुअली सुनने में अजीब सा लगेगा जब मैं ये कहूंगा, मुझे अपने माता पिता से अगर एक ही शिकायत है तो वो ये है कि उन्होंने मेरे साथ बहुत सारा वक्त नहीं गुजारा, बहुत जल्दी चल बसे। तो मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि मैं बहुत लंबी उम्र तक जीऊंगा, और इस लंबी उम्र के साथ साथ मैं बहुत सारा लंबा अरसा उन्हीं के साथ गुजारूंगा, ताकि उन्हें लगे नहीं कि उनका बाप उनके साथ नहीं रहा। तो जब भी मौका मिलता है मैं उनके साथ पढ़ता हूँ, उनके साथ सोता हूँ, बातें करता हूँ, उनकी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व करता हूँ। मुझे बहुत बुरा लगता है जब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स की प्रॉब्लम्स होती हैं उनकी, मेरा बस चले तो मैं बोलूं दवा करो इनको, बंद करो, लेकिन बोलता हूं देखो बेटा रिश्ते में एक दूसरे की खुशी भी देखनी पड़ती है, मुझे नहीं अच्छा लगता। कहना तो चाहता हूं कि इस लड़के को दवा करो, पर कभी कभी उसके लिए प्रेजेंट भी चूज करने पड़ते हैं। बेटी पूछती है पापा आपको क्या लगता है उसे क्या अच्छा लगेगा?
पापा व्हाट डू यू थिंक ही लाइक?
मैं कहना चाहता हूं उसके मुंह पे ये अच्छा लगेगा, लेकिन
लेकिन उस लड़के का क्या जो आपके बारे में जानता है फिर भी आपकी बेटी के नजदीक आने की उम्मीद रखता है, ये उसके लिए बहुत मुश्किल होगा।
उसके लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। एक्चुअली मैं अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ, लेकिन मैं इस बात को साफ साफ समझता हूँ कि वो अपने दोस्तों के साथ भी वक्त ज्यादा गुजारना चाहते हैं, और मैं इस बात में दखल नहीं देना चाहता। मुझे दूसरों की प्राइवेसी की बहुत ज्यादा इज्जत है, तो मैं उनमें से नहीं हूँ कि उनके कमरे में जाऊँ जैसे ही वो आए और कहें मैं आ गया, हेलो कुछ बातचीत करें, नहीं। एक्चुअली मैं चाहूँगा कि वो मुझे बुलाएं। तो मैंने एक प्लान बनाया है, मैंने आजकल इटालियन खाना बनाना सीख लिया है, वो रात को 2-3 बजे वापस आए दोस्तों के साथ, उन्हें भूख लगेगी, और मैं तो जाग ही रहा होता हूँ क्योंकि मैं 5-6 बजे से पहले सोता नहीं हूँ। जैसे ही वो फोन उठाएं किचन में लगाने के लिए मैं वो नंबर देखता रहता हूँ, 9 नंबर। जैसे ही 9 नंबर बजता है मैं फोन ले लेता हूँ, कहता हूँ हेलो हाँ पास्ता खाओगे, और पहुंच जाता हूँ।
शब्द उभरते हैं बांद्रा मुंबई, बैकग्राउंड में मुंबई का ट्रैफिक है, खान का किचन, खान अब्राम के साथ फर्श पर बैठकर खाना खा रहे हैं। खान केचप से पिज्जा पर स्माइली फेस बनाते हैं।
स्माइली फेस
शब्द उभरते हैं दादर फ्लावर मार्केट मुंबई, लेटमन दुकानदारों की तरफ हाथ हिलाते हैं।
कैसे हैं आप लोग? मैं डेव हूँ।
दुकानदार फूलों की माला बना रहे हैं।
ये फ्लावर मार्केट है, बहुत ही खूबसूरत।
फूल वाला लेटमन को एक गुलाब देता है।
बहुत बहुत शुक्रिया, ये आपके लिए।
लेटमन वो गुलाब एक फूल बेचने वाली महिला को देते हैं। एक आदमी लेटमन के पास आता है।
मिस्टर लेटमन?
जी हाँ, मैं वही हूँ। क्या मैंने आपसे कभी उधार लिया है? फिर ठीक है।
मैं आपके शोज देखता था।
क्या नाम है आपका?
ओवन।
ओवन, कहाँ रहते हैं आप?
न्यू जर्सी में।
छुट्टियों पर आए हैं?
हाँ, अपनी माँ से मिलने आया हूँ।
ओह, आपकी माँ मुंबई में रहती है? क्या बात है, उनके लिए मुझे एक अच्छा गिफ्ट मिल गया।
एक दुकान में हिंदुस्तान के देवी देवताओं की सुनहरी फ्रेम सजी है।
कैसे हैं आप? लाइट वाली तस्वीर का कितना?
लेटमैन एक फोटो फ्रेम खरीदते हैं।
ये मैं आपकी माँ के लिए ले रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही खूबसूरत है ये।
ये लीजिए, अच्छा लगा आपसे।
आपकी माँ को कहना मैंने हेलो कहा।
अपने किचन में खान लहसुन काट रहे हैं, उनके एप्रन पर लिखा है कुकिंग फॉर डे।
आपके सम्मान में पहन रहा हूँ।
वाह, ये हुई ना बात। क्या मेरे लिए कोई ऐसा काम है जिससे मैं खाना बनाने का नाटक कर सकूँ?
हाँ हाँ, आप ये कर सकते हो।
फूड प्रोसेसर चलता है।
ये तो मैं कर ही सकता हूँ, आप छोड़ेंगे तभी तो मैं करूँगा।
ये आसान है।
तो जब आप रात को बच्चों को पूछते हैं तो वो क्या चाहते हैं कि आप बनाएं? पिज्जा?
डेव, मैंने अभी खाना बनाना सीखा है तो मुझे ज्यादा चीजें नहीं आती। आलियो ओलियो पेस्टो बना सकता हूँ, पेपर चिकन बना लेता हूँ, रिसोटो,
पार्मेसन चीज,
ये काफी है।
आप मुझसे पूछ रहे हैं?
आप थोड़े से इस चिकन को ठीक कर दोगे?
हाँ, उतना तो मैं कर सकता हूँ।
लेटमन चिकन पीसेस कूटते हैं।
नहीं नहीं नहीं, इतना तेज मत मारो यार।
हल्के हाथों से करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, तो कुकिंग फॉर डे में आपका फिर से स्वागत है। कितने बड़े पीसेस चाहिए आपको?
छोटे छोटे पीस करना।
इतने ठीक है।
चिकन के छोटे टुकड़े काटते हैं।
ये चाकू तो काफी तेज है।
लेटमन अपनी उंगली कटने का नाटक करते हैं।
ठीक है, मैं चिकन काट लेता हूँ, आपको काम करने की जरूरत नहीं।
एक सेकंड के लिए भी नहीं?
मैं 30 साल से एक्टिंग कर रहा हूँ, मेरे सामने एक्टिंग करोगे तुम?
क्या आप डरी? थोड़ा सा?
हाँ।
चलो ठीक है, थोड़ा भी काफी है मेरे लिए। अच्छा, मेरा वो प्लॉट सही था ना, जहाँ मैंने कहा वो ये चाकू बहुत तेज है?
हाँ, सीन बहुत अच्छा लिखा था।
थैंक यू।
लेकिन एक्टिंग बहुत खराब थी।
बस एक्टिंग ढीली पड़ गई। क्या आपकी वाइफ भी हमारे साथ डिनर करेंगी?
हाँ, वो आ रही। बहुत अच्छी है वो।
वैसे आपका चिकन बनाने का तरीका बहुत कमाल का है।
मैं अच्छा कर रहा हूँ?
हाँ, लगता तो है। जानते हो मुझे क्या पसंद है यहाँ? अरेबियन सी, बस यहीं पास है।
मैं एक्चुअली दिल्ली से हूँ डेव, तो मेरे लिए मैंने कभी भी समुद्र ऐसे नहीं देखा था। दिल्ली जो है लैंड लॉक्ड है, और मुंबई में छोटी सी सड़क से निकलो और सडनली आपके सामने बड़ा समुद्र आ जाता है, जैसे न्यूयॉर्क में भी है। और मुझे वो सबसे बड़ा रीजन है कि मैं घर चाहता था कि समुद्र किनारे हो। मैं भावुक नहीं होना चाहता, मगर मुझे लगता है समुद्र के सामने आदमी जब खड़ा होता है तो उसे मालूम पड़ता है कि वो कितना मामूली और छोटा है।
वैसे जब मैं कैलिफोर्निया में था, मेरे कुछ दोस्तों के घर पैसिफिक ओशन के सामने थे। वहां जाकर ऐसा ख्याल आता था, अच्छा है कि मैं यहाँ नहीं रहता, वरना मुझसे तो कोई काम नहीं हो पाता। क्योंकि जैसा कि आपने अभी कहा, एक बार समुद्र की तरफ देखने लगो तो बस ऐसा लगता है कि हम मेडिटेशन कर रहे हैं।
बिल्कुल मग्न हो जाते हैं।
एक नजारा, समंदर पर सूर्यास्त हो रहा है। खान चिकन के टुकड़े पैन में फ्राई करते हैं।
मैं सारा दिन समुद्र को देख सकता हूँ। एक्चुअली ये एक चीज़ है जिसमें मैं मग्न होता हूँ, अदरवाइज मुझ में बिल्कुल भी ठहराव नहीं है। मुझे हमेशा काम करता रहूँ, काम करता हूँ। आप बहुत काम करते हो?
हाँ, मैं भी एक जगह नहीं बैठ सकता, मैं भी कुछ ना कुछ करते रहता हूँ। मैं बहुत ही उस्ताद हूँ लोगों को राय देने में। जिंदगी ऐसे जियो, यहाँ अपनी जिंदगी का पता नहीं, लेकिन दूसरों को राय देता रहता हूँ।
मैं भी, मुझे भी सबको सलाह देना बहुत अच्छा लगता है। काफी लोग आते हैं मेरे पास सलाह के लिए, और कभी कभी मैं अपनी सलाह सुनकर सोचता हूँ मुझे अपनी सलाह फॉलो करनी चाहिए।
हाँ, यही तो बात है, कितना आसान होता है दूसरों की जिंदगी को
सलाह देना। आसान है
बजाय अपनी।
शाम का वक्त है, चौपाटी पर भीड़ है, परिवार पिकनिक मना रहे हैं, चाय पी रहे हैं, पानी में घूम रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं। अब दिखता है न्यूयॉर्क का स्टेज।
आपकी ताकत क्या है?
साफ साफ कहूँ तो मेरे बच्चे, सिर्फ मेरे बच्चे। और ये बात अमूमन लोग कहते हैं, लेकिन मुझे लगता है वो महसूस तभी होती है जब आप खुद माँ बाप बनते हैं। तो बाप बनने के बाद मुझ में बहुत चेंज आए हैं। मुझे लगता है मैं जेंटल हो गया हूँ, काइंडर हो गया हूँ, कंपैशनेट हो गया हूँ, और अब ज़्यादा फिक्र भी करने लगा हूँ, एंग्शियस हो गया हूँ। आप मानोगे नहीं, मेरे सर पर इससे भी ज़्यादा बाल थे बिना हेयर प्रोडक्ट्स के, अब कम हो गए। लेकिन मेरा एक छोटा वाला भी है, 6 साल का, एकदम मासूम सा, प्यारा सा। और एज एन एक्टर मुझे बच्चों के साथ वक्त गुजारना बहुत अच्छा लगता है। उनमें एक सच्चाई है, एक मासूमियत है, एक स्ट्रेट फॉरवर्डनेस है, गुडनेस है। कैसे वो बिना सोचे समझे जिस तरह से वो बात कह देते हैं, बिल्कुल ही
बच्चे मासूम होते हैं, फ्रैंक होते हैं, सब कुछ
जो मन में आता है साफ साफ बोल देते हैं। मैंने अपने 3 बच्चों से यही सच्चाई और अच्छाई सीखी है।
एक बात बताइए, जब आप दिल्ली में थे तब जिंदगी कैसी थी? आप 5 साल की उम्र में वहाँ गए थे, सही है ना?
हाँ, मैं दिल्ली में पैदा हुआ था, और फिर पता नहीं क्यों, किस वजह से मेरी माँ ने मुझे मेरी नानी को गोद दे दिया।
खान के बचपन की फोटो।
और फिर उन्होंने मुझे 5 साल तक पाला।
नहीं, मतलब जरा फिर से समझाइएगा प्लीज।
कोई कानूनी तौर से नहीं गोद दिया गया था, बस उनका दिल बड़ा था मेरी माँ का, क्योंकि मेरी नानी का कोई बेटा नहीं था, तो उन्होंने कहा कि मेरी चार बेटियाँ हैं, मुझे एक लड़का चाहिए, और नाना जी शायद बूढ़े हो चुके थे, इसलिए उन्होंने मेरे लिए मांग की। तो मेरी माँ ने कहा ठीक है इसे रख लो, कम से कम मुझे तो ऐसा ही बताया गया था।
लेकिन नहीं नहीं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्या ऐसा अक्सर होता है?
नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जब मैं उसके बारे में अब सोचता हूँ तो लगता है मेरी माँ मुझे शायद पसंद नहीं करती थी।
वैसे इस बारे में मुझे ज्यादा पता है, मुझे लगता है आपकी माँ का आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा हाथ था, और शायद आपके करियर में भी। मगर फिर क्या हुआ, आप अपनी नानी के साथ रहने चले गए?
हाँ,
कहाँ?
हाँ, मैंगलोर में, जो साउथ इंडिया में है। मेरे नाना जी कर्नाटक स्टेट में चीफ इंजीनियर थे, और फिर 5 साल बाद शायद, जब मेरी माँ को दूसरा बच्चा नहीं हुआ, तो उन्हें मेरी बहुत याद आने लगी और वो मुझे वापस ले आई। बस ऐसे मैं वापस आ गया।
तो वैसे देखा जाए तो आपके भी 3 बच्चे हैं, क्या आप उनमें से किसी को देना पसंद करेंगे?
हाँ, तीनों के तीनों।
मुझे तो नहीं लगता।
नहीं, एक्चुअली बात यह है कि इंडिया में परिवारों का एक अपना अलग तरीका है, सब बहुत नजदीकी रिश्ते हैं, इसलिए माँ को लगा होगा कि मेरी परवरिश नानी के यहाँ बेहतर हो सकती है, और फिर लगा होगा कि नहीं, इसलिए वापस ले आई। मेरे वैसे पिताजी का काम भी अच्छा नहीं चल रहा था, वो देश की आज़ादी के लिए लड़े थे, फ्रीडम फाइटर थे, इसलिए बहुत ईमानदार थे, इसलिए कामयाब नहीं थे।
फ्रीडम फाइटिंग किसके खिलाफ?
अंग्रेजों के खिलाफ।
अंग्रेजों के, कॉलोनियलिज्म के, अंग्रेजों के, क्योंकि इंडिया आजाद नहीं हुआ था 1947 तक।
1947।
वाह, आपके पिता की आत्मा को शांति मिले, क्या बात है। हाँ, तो आपके माता पिता गुजर गए
बहुत जल्दी।
बहुत जल्दी। तो उसके अलावा क्या लगता है आपको, आपका बचपन खुशहाल रहा?
हाँ, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मेरे माँ बाप जो हैं इतनी छोटी उम्र में चल बसे, और मैंने इस दुख के बावजूद जिंदगी जीना सीख लिया। कभी कभी सोचता हूँ आज 53 साल की उम्र में जिंदा होते और मेरी सफलता को देखते तो अच्छा होता। एक्चुअली पता नहीं मैं क्या सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ जो हुआ अच्छे के लिए हुआ।
हाँ, काफी अच्छी सोच है, मुझसे भी लोग यही सवाल पूछते हैं, क्योंकि मेरी माँ 93-94 साल की उम्र तक रही और वो खेलते कूदते गुजर गए। नहीं, मजाक कर रहा हूँ। और लोग कहते हैं कि ये तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन सच्चाई ये है कि 93 साल तक जो औरत उस घर में रह रही थी वो मेरी माँ जैसी नहीं रह गई थी। इसलिए मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाहते हैं।
आप अपनी माँ के बहुत करीब
थे। मालूम क्यों? उस पर तो एक और शो करना पड़ेगा। लेकिन आपके पिता शायद एक एक्टर बनना चाहते थे, सही है?
नहीं नहीं, एक्चुअली फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से उनकी काफी जान पहचान थी, और एक हीरोइन थी मधुबाला जिसे वो बहुत पसंद करते थे, तो उसके नजदीक जा सके इस बहाने से वो वहां पर पहुंच गए मुंबई, लेकिन डायलॉग की उनसे एक लाइन नहीं बोली गई, तो 3 दिन में वो वापस आ गए।
फिर वापस आकर वो एक वकील बन गए, ये बात तो सही है।
नहीं, एक्चुअली वो कुछ भी नहीं बने। मैं उन्हें दुनिया का सबसे कामयाब नाकामयाब इंसान मानता हूँ, दिल के बहुत अच्छे थे, और कई बार केस भी नहीं लिया करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था लॉयर को कभी कभी छोटे मोटे झूठ बोलने पड़ते थे। एक तरह से अच्छा भी हुआ, क्योंकि इसी बहाने मुझे उनके साथ बहुत सारा वक्त गुजारने का मौका मिला।
तो वो जब गुजरे, क्या आप मुंबई आ चुके थे?
नहीं नहीं, मैं 15 साल का था, और ये एकदम अचानक से हुआ।
15 साल के थे?
हाँ, मैं 15 साल का था।
वो उम्र बहुत नाजुक होती है।
हाँ, बहुत मुश्किल था, क्योंकि एक दिन सडनली घर आए पिताजी और उन्होंने कहा कि मुझे कैंसर है। हमने कहा ठीक है, इतना पता नहीं था, इतनी भयानक बीमारी है, और फिर 3 महीने के अंदर ही वो चल बसे। हमें तो कुछ समझ में नहीं आया। कुछ सालों में हमें लगा कि सब अब ठीक हो जाएगा, और अचानक एक ऐसी ही बीमारी से मेरी माताजी का भी देहांत हो गया।
जहाँ तक मैंने पढ़ा है आपकी माँ के गुजर जाने के बारे में, उनका जाना आपके लिए बहुत ही मुश्किल दौर था। मेरा मतलब है, ये बातें आसान नहीं होती, लेकिन आपकी दुआओं से, दिली दुआओं से आप उस बहुत ही मुश्किल दौर से निकल पाए।
हाँ, मौत के लिए मेरी एक अजीब सी सोच है, एक थ्योरी है मेरी, क्योंकि कम उम्र में ही मैंने अपने इतने सारे परिवार के सदस्य खो दिए मौत को। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप जिंदगी में पूरी तरह से खुश हैं और उस वक्त मौत दस्तक देती है, तो लोग खुशी खुशी से चले जाते हैं। लेकिन अगर आप खुश नहीं हैं, आपके कुछ काम अधूरे हैं, तो आप सोचते हैं नहीं 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 यार, अभी हम नहीं जा सकते, और आप रुक जाते हैं। उस वक्त मेरी माताजी आईसीयू में थी, तो मुझे लगा कि मैं उन्हें अगर थोड़ा परेशान करूं ताकि वो फिक्रमंद रहे मेरे बारे में, जिंदगी के बारे में, तो वो नहीं जाएंगे। और मैंने उनसे कहा कि मैं अपनी बहन को बहुत तंग करूंगा, मैं उसकी शादी नहीं करवाऊंगा, कभी खुद काम नहीं करूंगा, शराब पीने लगूंगा, सारी बुरी बातें कह रहा था। ये सोचकर कि जब वो निर्वाणा की तरफ बढ़ रही होंगी, स्वर्ग जैसी जगह की तरफ जा रही होंगी, बस पहुंचने ही वाली होंगी और कहेंगे अरे मेरे खुदा, इस लड़के के लिए मुझे अभी जिंदा रहना पड़ेगा, और वापस आ जाएंगे।
मैंने आज तक ऐसा कभी नहीं सुना कि कोई बेटा अपनी माँ से कहे जो आपने उनसे कहा कि अगर आप चली गई तो मैं इस दुनिया का सबसे बुरा बेटा बन जाऊंगा।
हाँ, सबसे बुरा बेटा। हाँ, हाँ।
ताकि वो किसी तरह वापस आ जाए।
हाँ, वापस आ जाएंगे, पर हुआ नहीं।
तो आपके माता पिता आपकी ये जबरदस्त शोहरत या इसकी शुरुआत भी कभी नहीं देख पाए?
नहीं, एक्चुअली ये भी हो सकता है कि वो इसी वजह से चल बसी, क्योंकि उनकी मौत के एक दिन पहले मैंने एक मुंबई में सीरीज ख़त्म की थी, तो वो सीरीज को लेकर मैं टीवी वीसीआर के साथ डॉक्टर से परमिशन लेके आईसीयू पहुंच गया और मैंने उन्हें वो एपिसोड दिखाया और अगले दिन ही वो चल बसी। इसी वजह से अब मेरे काम की कोई कितनी भी बुराई करे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता।
जाहिर है आपकी माँ आपके लिए बहुत मायने रखती है, और आप कह भी चुके हैं कि आपने औरतों से काफी कुछ सीखा है, उनसे भी जिनके साथ आपने फिल्मों में काम किया है।
हाँ, सच तो यह है कि एक तरह से मैं औरतों के बीच में ही पला बड़ा हूँ। मेरी माँ की तीन बहनें थीं और मेरे ख्याल से अपने परिवार में मैं ही इकलौता लड़का था, तो सभी औरतें मुझे बहुत प्यार करती थी, और फिर मेरे ये डिम्पल भी हैं तो सभी बहुत पसंद करती थी और हमेशा मेरे गाल खींचती रहती थी।
तो हर जगह आपके साथ ऐसा ही होता है ना?
क्या ये डिम्पल?
हाँ, और आपकी हर अदा लोगों को दीवाना करती है। ऐसी दीवानगी मैंने कभी नहीं देखी।
मुंबई में शाहरुख खान का फुटेज दिख रहा है। पुलिस की देखरेख में खान विशाल भीड़ के बीच जाते हैं। भीड़ में बहुत उत्साह और जोश है। उनके फैंस पिक्चर्स लेते हैं, उन्हें छूने की कोशिश करते हैं। पुलिस भीड़ को काबू करने की कोशिश करती है। खान एक कार की छत पर खड़े होकर फैंस की तरफ हाथ हिलाते हैं। अब न्यूयॉर्क स्टेज पर।
और वो सी गैंग क्या था? उसका नाम सी गैंग ही था ना?
हाँ,
हाँ, वो सब वो क्या था?
उन फिल्मों का दौर था, ग्रीस जैसी, जब टी बर्ड्स और लेदर की जैकेट्स और बाल ऐसे ऊपर,
जेम्स डीन जैसे। हाँ,
जेम्स डीन थोड़ा सा, और जॉन ट्रैवोल्टा।
हाँ,
और हमने डिसाइड किया कि हम भी वैसे ही लेदर की जैकेट पहनेंगे, और
यानी आपके दोस्तों ने,
मैं और मेरे दोस्त, हम चार दोस्त थे। फिर हमने गैंग बनाया स्कूल में और हम उन्हीं लोगों की तरह बिहेव करते थे, डांस करते थे म्यूजिक पे, और समझते थे लड़कियों को हम बहुत पसंद आएंगे, हम बहुत कूल हैं, लेकिन कोई हमें सीरियसली लेता नहीं था। ऐसे गैंग था, फिर हमने उसे बहुत खास भी बना दिया, एक्सक्लूसिव एक बैच बनाया, लैमिनेटेड बैच था, जो उस वक्त बनाना बहुत मुश्किल था।
ये असली गैंग की निशानी है।
बिल्कुल,
अगर आपने लैमिनेट कराया।
और मुझे याद है हम नाइकी के जूते पहनते थे और उस पर ग्रे सूश होता था, सफ़ेद शर्ट और ब्लू जीन्स, और अपने हाथ से लिखा हुआ सी, और हम सेम कपड़े पहन के हर पार्टी पर जाते थे और अपने पंजों पर चलते थे और एक दूसरे से कुछ अजीब सी भाषा में बात करते थे, कूल सी।
How's it hanging, man? Yeah, cool, yo, what, dude?
और उस सी का क्या मतलब था?
हमारी क्लास का सेक्शन था, क्लास का सेक्शन।
अच्छा, खैर, अब उस लड़की के बारे में बताइए जिससे आपको मोहब्बत हो गया और वो चली गई, वो मुंबई चली गई, फिर आप और आपके दोस्त वही सी गैंग है ना? आपने उनसे कहा हम मुंबई जा रहे हैं, हमें उसे ढूंढना ही होगा, जबकि आपको पता ही नहीं कि वो कहाँ रहती है। बस इतना पता है कि उसे स्विमिंग पसंद है, तो आपने सोचा आप उसे बीच पर जाकर ढूंढेंगे।
हाँ, और मैं मुंबई पहुंच गया, और इससे पहले मैं कभी मुंबई आया नहीं था, और मैं उसे ढूंढने लगा बीचेस पर, और तब पता चला कि मुंबई में एक बीच नहीं है, बहुत सारे बीच हैं, क्योंकि मुंबई आइलैंड सिटी है और चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है। हमने तो सिर्फ फिल्म में देखा था, वो मरीन ड्राइव का एक बीच दिखता है जिसपे लाइटें होती थी, और हम वहाँ पहुँच गए हर रोज उसी बीच पर और ढूंढते रहते थे, और मुझे लगता था वो पानी में से निकलेगी बोट डायरेक्ट की तरह, जैसे 10 फिल्म के अंदर हाई स्पीड के अंदर ऐसा लगता था मुझको ऐसे पानी में हाई स्पीड में मेरी तरफ भागती भी आएगी लेकिन ऐसा हुआ नहीं फिर एक दिन हम एक टैक्सी में बैठे एक बहुत प्यारे से सरदार जी की टैक्सी थी सरदार जी पंजाब से सरदार जी थे और और उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम क्या चाहते हो तो मैंने कहा यार मैं अपनी गर्लफ्रेंड चाहता हूँ और मैंने उन्हें बताया कि मेरी गर्लफ्रेंड को स्विमिंग पसंद है और वो बीच पर होगी हम उसे ढूंढ रहे हैं तो उन्होंने कहा अरे इतने तो बहुत सारे बीच हैं तो मैंने कहा क्या ये एक बीच नहीं है उन्होंने कहा नहीं अरे ये है वो है अक्सा बीच है गोराई बीच है बहुत सारे बीच है तो मैं कह रही यार तो मैंने कहा मेरे पास 400 रुपये हैं आप हमें सारे बीचेस पे ले जाइए और मीटर में जब 400 रुपये आए आप हमको उतार दीजिएगा सही तो वो ले गए हमको वहाँ पर तब तक मेरे दोस्त जो थे भड़क चुके थे तो उन्होंने कहा यार तुम्हारी लव स्टोरी अब खत्म हो चुकी है एक्चुअली उनको भूख लगी हुई थी हमने हमारे पास कोई जगह नहीं थी हमने अपना कैमरा भेज दिया था कि मुंबई की सड़कों पे हम रह सके थे दिनों से फिर हम जाने ही वाले थे वहाँ से और मुझे एक आवाज़ सुनाई दी मैं जाने लगा और एकदम आवाज आई मैंने कहा यार आखिरी वाला बीज है यार यहाँ पे चेक कर लूंगा नहीं बिल्कुल नहीं चेक करना हम नहीं जा रहे तेरे साथ मैं कहा यार बस एक मिनट एक बार मैं चेक कर लूंगा मुझे लग रहा वही है और मैं पूरे यकीन से वहाँ भाग कर पहुंचा और गौरी 150 फ्रेम से बाहर पानी से निकलते हुए मेरी तरफ आ रही थी नहीं 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 ऐसा नहीं हुआ ये मजाक कर रहा हूँ लेकिन वो वहां पर थी और देखते ही मुझे बोली तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो
एक आर्ट स्टूडियो दिखता है जहाँ गांधी जी की विशाल मूर्ति और फिल्म पोस्टर्स लगे हैं एक पोस्टर पेंट हो रहा है खान की ऑयल पेंटिंग है जो तकरीबन 10 फुट ऊंची है और अब खान के घर के डाइनिंग टेबल पर पास्ता और चिकन परोसे जा रहे हैं
आपको अच्छे से खिलाना है
थैंक यू वेरी मच बढ़िया लग रहा है
ये अच्छा बनाते हैं
अच्छा बनाए ना
मैं सिर्फ टेस्ट कर
और भी अच्छा बनाने लगूंगा
आपको सीएन के बारे में कुछ पता
बिल्कुल
आपने तो बहुत किस्से सुने होंगे
अभी तो मैं भी उनके टच में हूँ वो मेरे भी दोस्त हैं
तो ये लोग मुंबई आए थे और इन्हें पता था कि आपको स्विमिंग पसंद है
जी।
तो ये बीच पर इंतजार करते थे क्या वाकई ऐसा हुआ था
जी बिल्कुल वही हुआ आज तक मैं शॉक में हूँ कि इन्होंने वो कैसे मैनेज किया
बिल्कुल
अजीब पागलपन था तब ना मोबाइल फोन था ना इन्हें बॉम्बे के बारे में कुछ पता था
तो क्या आपको लगा इससे पीछा छुड़ाना चाहिए ये आपको परेशान कर रहे थे
मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए था क्योंकि ये मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही पोजेसिव हो गए थे तब हम बहुत यंग थे टीनेजर्स थे
आपकी शादी को कितने साल हो गए
करीब
91, 2001, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
मैंने तो गिनना छोड़ ही दिया
27 साल हो गए
आपके पेरेंट्स क्या सोचते थे इसके बारे में
उन्हें कुछ पता नहीं था क्योंकि मैंने उन्हें कुछ बताया नहीं था एक्चुअली हमारी फैमिली बहुत कंजर्वेटिव है और उस वक्त ये डेटिंग वगैरह आम बात नहीं थी तो उन्हें थोड़ा वक्त लगा इन्हें एक्सेप्ट करने में और फिर वो बॉम्बे आए इनके साथ वक्त बिताया और तब जाके इन्हें पसंद करने लगे
तो ये तो बहुत ही चार्मिंग है क्यों
हाँ यही तो वही तो किया इन्होंने और अब मेरी माँ उनसे बहुत प्यार करती है
तो अब आपके 3 बच्चे हैं और 2 तो बड़े हो गए वो दोनों इस वक्त एक अलग ही दुनिया में रहते हैं तो क्या आपको उनकी कोई फिक्र होती है
नहीं
सच में आपको उनकी फिक्र कैसे नहीं होती
मैं बहुत शांत हूँ और रिलैक्स रहती हूँ जिंदगी के हर चीज के लिए
झूठ बोल रही हर रात सोने से पहले
हाँ ऑफ कोर्स
झूठ बोल रही है
नहीं नहीं ऐसे ही है बातें बना रही है हमेशा कमरे में आकर कहती है देखो ऐसा हुआ सुवाना ने ऐसा किया आर्यन को आप समझाइए ना
नहीं मेरा कहना है कि हमें उनकी फिक्र है लेकिन हम फिक्र से पागल नहीं हो जाते
मेरा बेटा अभी 16 साल का है लेकिन उसके विदेश जाने की बात या दूसरे किसी कॉन्टिनेंट में मुझे तो परेशान कर देती है
वो यहाँ बहुत आराम की जिंदगी जी रहे थे यहाँ हमारा इतना स्टाफ है इतनी हेल्प है कि उन्हें कुछ नहीं करना पड़ता है हमारी जो जिंदगी है यहाँ उन्हें जरूरत से ज्यादा आराम है और मैं नहीं चाहती थी कि वो ऐसे बड़े
समझ सकता
एक्चुअली मेरी रोजमर्रा की जिंदगी में बॉडीगार्ड्स फैंस लोग प्यार करने वाले चारों तरफ तो बहुत मुश्किल है कि बच्चों पर इस बात का असर ना पड़े तो गौरी ने ये डिसाइड किया कि एक उम्र के बाद बच्चों को इन सब चीज़ों से हम दूर रखेंगे और अब जब वो यहाँ पर वापस आते हैं तो लोग घेर लेते हैं तस्वीरें खींचते हैं उनकी चारों तरफ से घिर जाते हैं
पसंद नहीं है
हाँ
परेशान हो जाते हैं नहीं हेट तो बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है, जवान है, हैंडल कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी बहुत ज्यादा
लग रहा है कि चलो उन्हें वापस ले।
अरे डेव ने तुम्हें बच्चों को मिस करवा दिया।
अब मैं नर्वस हूँ, शायद पहली बार।
बाजार में शानदार कार्पेट्स और जरी की कढ़ाई किए गए कपड़े बेचे जा रहे हैं। बहुत भीड़ है, ट्रैफिक जाम हो रहा है। रात को बाजार में स्कूटर्स आ जा रहे हैं, लोग सामान और खाने पीने की चीजों की खरीदारी कर रहे हैं, खूबसूरत कपड़े बिक रहे हैं। अब न्यूयॉर्क में स्टेज पर।
मैंने हाल ही में एक फिल्म देखी, फैन। मुझे बहुत पसंद है। मैं वाकई उस फिल्म को देखकर मैं आपके लिए काफी डर गया था। उसमें जो वो बर्थडे सेलिब्रेशन दिखाया गया है, नीचे हजारों की तादाद में भीड़ खड़ी है और फिर आप वहां आ जाते हैं। अब अगर मुझसे कोई कहे डेव 10,000 लोग आपके घर के बाहर खड़े, मैं तो बेसमेंट में छुप जाऊंगा। मैं घर के बाहर नहीं निकलूंगा किसी भी हालत में।
हाँ ये तो डिपेंड करता है ना कि वो वहां पर आए क्यों हैं।
यही तो प्रॉब्लम है।
मुझे तो मेरे साथ प्यार बांटने आते हैं, आपके वहां का मुझे पता नहीं।
हाँ वहाँ की कल्चर और सोसाइटी दोनों ही अलग है।
हाँ हमारा कल्चर अलग है, हमारा समाज अलग है, बहुत अलग कल्चर है हमारा। और लोग जो है दुनिया भर से मुझे मिलने आते हैं, मोहब्बत बांटने आते हैं, तोहफे देने आते हैं, और मैं भी हर किसी से मिलता हूँ। मेरे घर के बाद जितने भी लोग आते हैं मैं उन सब से मिलता हूँ सुबह 5 बजे तक।
तो क्या कभी आपकी वाइफ ने नहीं कहा देखो बाहर मत जाओ, 5 बजे सुबह जाकर सेल्फीज लेने की और ऑटोग्राफ देने की जरूरत नहीं?
हम दोनों के लिए ये बहुत अजीब सी एक नई सी जिंदगी थी। मैं मुंबई में आया और मैं मूवी स्टार बन गया। ऐसी चीजें हमने दूसरों के साथ होते हुए देखी थी, दूर से देखी थी, और सडनली मैं इतना बड़ा स्टार बन गया। और गौरी ने ये बहुत जल्दी रियलाइज कर लिया कि मेरी जिंदगी पर अब सिर्फ उसी का हक नहीं है, दूसरों का भी है, उन लोगों का जो मुझे चाहते हैं। और मैं भी ये बात बहुत पसंद करता हूँ। और उसने पिछले 31 सालों में मुझे कभी इस बात का एहसास नहीं होने दिया है कि मैं जो अपनी ये शेयर कर रहा हूं फैंस के साथ और उसके साथ, ये कुछ अजीब बात है।
खान के घर के सामने जमा फैंस की तरफ लेटरमैन और खान का हाथ हिलाने वाला दृश्य वापस दिखता है। अब खान के घर में डिनर का दृश्य उभरता है।
मुझे समझाइए, आज आपके घर के बाहर कुछ ज्यादा ही भीड़ थी, वो क्यों?
क्योंकि आज ईद है और हमारे इस्लाम में रमजान के 30 दिनों के बाद ईद आती है और मुसलमानों के लिए क्रिसमस जैसा दिन है। तो सारे मुसलमान भाई चांद दिखते ही रात भर सड़कों पे जश्न मनाते हैं। और मेरा छोटा वाला अब्राम जो है वो ये आवाजें सुनकर सुबह आकर मुझे उठाता है और कहता है पीपल्स आर वेटिंग। उसको आवाजें आती हैं।
बात सिर्फ इतनी नहीं कि आप बाहर जाकर अपने फैंस को हेलो बोल रहे हैं, ये उससे कहीं ज्यादा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपने अपने मूवी स्टार के दर्जे को एक अलग मुकाम दे दिया है। अब पता नहीं क्या ये इस वजह से है कि आप बहुत क्यूट है या फिर यहाँ का ये कल्चर ही ऐसा है।
इनका लोगों से रिश्ता बन जाता है और वो उनसे प्यार करने लगते हैं। जब ये उनकी तरफ हाथ हिलाते हैं शायद कोई दिल का कनेक्शन बन जाता है, लोग इनसे मोहब्बत करते हैं, शायद यही बात है।
मैं ये जिंदगी नहीं जी रहा होता अगर लोग मुझे दिन रात इतनी शिद्दत से प्यार न रहे होते और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी फिल्में कैसी हैं। तो इस मोहब्बत के बदले में उन्हें क्या दे सकता हूँ? मेरी बस एक ही तमन्ना है कि जिंदगी रहते हुए मैं उन्हें एक बार मिल लूं, उन्हें छू लूं।
और आपको इस सब से कोई दिक्कत नहीं?
मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं जब तक मुझे जाके वहाँ उनके साथ खड़ा ना होना पड़े।
आपने कभी वहाँ ले गए?
नहीं कभी नहीं। मैं दरअसल अपनी बातें इस पर नहीं थोपता। मेरे ख्याल से इस तरह की शोहरत देखना ही मुश्किल है। मैं सबसे कहता हूँ कि मैं एक एलियन हूँ और मैं सिर्फ ये शाहरुख खान का जो इमेज बन गया है, जो छवि बन गई है, मैं उसके लिए काम करता हूँ। मैं असली में ये नहीं हूँ। और मेरे लिए सब बहुत अजीब है, कितने सारे लोग खड़े हुए हैं मेरे घर के बाहर और हाथ हिला रहे हैं और मैं उन्हें फ्लाइंग किसेस दे रहा हूँ। मैं खुद बहुत शर्मीला इंसान हूँ, गौरी भी शर्मीली है, तो ये सब करना मेरे लिए अजीब सा है। ये बड़े बड़े एक्शन करना, हाथ फैलाना जैसे फ्रेडी मर्क्यूरी करते थे, मेरे लिए, मैं फ्रेडी मर्क्यूरी नहीं हूँ, लेकिन मुझे करना पड़ता है कितना भी मुश्किल हो, क्योंकि मैं शाहरुख खान की उस छवि के लिए काम करता हूँ।
रात को बाजार में बहुत चहल पहल और भीड़ है, ट्रैफिक जबरदस्त है, खाने की चीजों के ठेले लगे हैं, लोग खा पी रहे हैं, मेला लगा है, झूले चल रहे हैं, मस्जिद में रोशनी की सजावट है। फिर से न्यूयॉर्क स्टेज पर।
Is it me?
क्या ये सिर्फ मेरी सोच है या फिर आप लोगों की हर मूवी में आप सब भीगे ही होते हैं?
DDLJ फिल्म का बारिश का सीन।
एक्चुअली हम इंडियंस बहुत हॉट हैं, हमें गर्मी बहुत लगती है, इसलिए जब मौका मिलता है हम नहाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अभी भी मेरा दिल कर रहा है ऊपर से पानी आए और मैं नहा लूं।
बाप रे।
असल में इंडिया में 1930s में जब फिल्में बनने लगी, हमारी सोसाइटी तब भी और आज भी थोड़ी कंजर्वेटिव ही रही है। तब कुछ नियम बदले और उन्हीं नियम और कानून के दायरे में रहते हुए भी अगर हमें कुछ दिखाना होता था जो रोमांटिक था, तो हम इसी तरह से दिखाते थे कि जब भी कोई लड़का और लड़की किस करने जा रहे थे तो सडनली स्क्रीन पर दो फूल आपस में आकर यूं मिल से जाते हैं, और हमें कभी समझ भी नहीं आया कि इन फूलों को किसने नीचे से पकड़ा हुआ है और ये फूल क्यों चूम रहे हैं। इसलिए काफी सारे बच्चे जो साइंस पढ़ते थे उन्हें आज तक ये लगता है कि फूलों के बच्चे ऐसे ही पैदा होते हैं।
बॉटनिस्ट कंफ्यूज हो गए होंगे। मुझे उम्मीद है कि मैं ये अक्षर अब सही बोल रहा हूँ।
DDJL
ये
DDLJ
माफ कीजिएगा LJ, ये एक रोमांटिक कॉमेडी है मेरे ख्याल से। खूबसूरत अंदाज, खूबसूरत लोग, और ये रिलीज होती है, लोग पसंद करते हैं, और फिर ये 20 सालों से थिएटर से नहीं उतरती।
जी
20 सालों से
20 साल और उस फिल्म में हम सब बहुत नौजवान थे। पहली बार का डायरेक्टर, पहली बार असिस्टेंट आदित्य चोपड़ा, फिल्म की एक्ट्रेस काजोल थी, और हंसते खेलते ये फिल्म बन गई। हमने कभी सोचा भी नहीं था
20 साल
ये फिल्म कुछ 50-60 दिन में बन गई, और फिर ये रिलीज हुई, लोगों को पसंद आई, और 20 साल तक लोग देखते ही रहे।
तो क्या आप हर तरह की फिल्म करेंगे या कुछ ऐसी भी फिल्में हैं जो आप कभी नहीं करना चाहेंगे?
जिन फिल्मों में घोड़ों पर सवारी करनी होती है मैं उसमें भाग नहीं लेता, मुझे आता नहीं, डर लगता है।
शायद मैंने आपको किसी एक फिल्म में देखा है।
एक थी वो मुझसे जोर जबरदस्ती की गई थी, चाइल्ड लेबर।
तो अब आप
नहीं, नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं करना चाह रहा था मैं वहाँ पर सेट पे था तो जो स्टंट कोऑर्डिनेटर थे एकदम आए, उन्होंने कहा बिल्कुल फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक है, घोड़ा भागेगा। मैंने उनको देखा और एकदम हट्टे कट्टे से स्टंट कोऑर्डिनेटर थे, मैंने कहा होएगा ना?
और बिल्कुल भी कुछ नहीं, एकदम भागेगा, बहुत तेज भागेगा।
मैं बैठा हुआ था वहाँ पे राजा की तरह, लंबे बाल थे, और फिर किसी ने कहा एक्शन, और जब एक्शन हुआ तो वो नहीं चला, और वो मैं इधर उधर देखता रहा, और बड़ा अजीब सा लगता है ना, ऐसे तलवार लेकर मैं बैठा हुआ था और घोड़ा चला ही नहीं है, और सडनली उन्होंने पीछे से एक मारा घोड़े को, और फिर वो जो घोड़ा ईं करके भागा है, फिर भागता ही रहा है और रुका ही नहीं है, चलता ही चला गया, चलता ही चला गया। और मैं वापस आया और मैंने उनको कहा कि अरे आपने कहा था ये घोड़ा रुका ही नहीं बिल्कुल।
तो उन्होंने कहा हाँ मैंने कहा था भागेगा, रुकने का थोड़ा ना कहा था। रुकना तो आपको था,
वो उसका प्रॉब्लम नहीं था सच में। क्या कभी भी कोई अमेरिकन फिल्म्स ने, मेरा मतलब है जब आप बड़े हो रहे थे, कभी भी इन फिल्मों के एक्टर या एक्ट्रेसेस ने आप पर कभी कोई छाप छोड़ी है?
टॉम क्रूज मेरा कंपटीशन है तो उसके बारे में नहीं, बचपन से ही मुझे माइकल जे फॉक्स बहुत पसंद है। हाँ, फैमिली टाइज में, और मेरी बहुत सारी एक्टिंग में उनकी झलक आपको मिलेगी। मैं बहुत प्रभावित था उनसे, जिस ईज से वो काम करते थे, जैसे वो जगह का इस्तेमाल करते थे फैमिली टाइज में, फिर ये बैक टू द फ्यूचर, और उन्होंने मुझे सिर्फ एक्टिंग के लिए इंस्पायर नहीं किया, उनकी ज़िंदगी ने और चीज़ों में भी मुझे इंस्पायर किया। इतने स्वीट थे, हमेशा नौजवान लगते थे। फिर हाल ही में मैंने ये भी पढ़ा कि उनको पार्किंसंस डिजीज़ हो गई थी, और किस तरह से वो उस डिजीज़ से जूझे, ये भी मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग है। और दूसरे एक्टर जो मुझे बहुत 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 अच्छे लगते हैं वो हैं पीटर सेलर्स, उनकी एक्टिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है।
आप कब तक इस शोहरत को जीना चाहते हैं, ये लार्जर देन लाइफ हीरो बनकर कब तक चाहते हैं ये सब? क्योंकि
इनकी अच्छाई है कि चाहते मैं जिंदगी भर काम करूं, लेकिन सीरियसली मैंने कैलकुलेट किया है 106 साल तक।
No, honestly, I'm not lying.
बहुत से लोग आप जैसा बनना चाहते होंगे, कि किसी तरह आपसे आगे निकल जाए। आप उनके बारे में क्या सोचते हैं?
मैं सब इन सब बातों के बारे में नहीं सोचता हूं। मैं एक्चुअली बहुत एकांत में रहना पसंद करता हूं, और अब समय के साथ मैं और भी शांत हो गया हूं। इसका ये मतलब नहीं कि मुझे लोग नहीं पसंद। जब मैं बाहर जाता हूं तो मुझे लोगों से मिलना, उनसे बात करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं थोड़ा सा अपने आप में रहता हूँ। एक्टर्स एक्चुअली बहुत इनसिक्योर होते हैं, और मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मैं अपने काम के जरिए उन सबका शुक्रिया अदा कर सकूँ जिन्होंने मुझे मेरी काबिलियत से बहुत ज्यादा दे दिया है।
आप एक फिल्म में थे, माफ करना मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, और वो डायरेक्टर जिसकी बीवी आपके साथ एक सीन में थी, और शायद वो सीन बहुत ही इंटीमेट होने वाला था, और वो शायद एक अफवाह भी छपी थी किसी मैगजीन में कि उन्होंने कहा था कि क्यों ना आप दोनों एक साथ रात बिताएं, एक दूसरे को ठीक से, एक दूसरे को समझने के लिए, और फिर अगले दिन हम लोग सीन शूट कर लेंगे। और जाहिर है कि ये बात बहुत इंसल्टिंग थी आपके लिए और उनकी बीवी के लिए भी।
मैं बहुत परेशान हो गया था, और मैं नया था इसलिए मैं हर खबर पर रिएक्ट भी करता था, जो कुछ भी पढ़ता था सुनता था। शुक्र है उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था, सिर्फ मैगजीन्स हुआ करती थी, और मैं बहुत नाराज हो गया। और मैंने उस मैगजीन के एडिटर को फोन करके पूछा कि ये क्या लिखा आपने, तो उन्होंने मुझे सामने से कहा, अरे परेशान क्यों हो रहे हो, ये तो मजाक है।
ऐसा मजाक?
मजाक नहीं, मजाक है, लेकिन मुझे तो ये मजाक नहीं लग रहा है। तो मैं उनके ऑफिस पहुंच गया और मैंने वहां पे बहुत बदतमीजी की।
किस तरह की बदतमीजी की?
यस इसी गैंग।
अपने लैमिनेटेड बैजेस के साथ।
हाँ, सी गैंग से कोई पंगा नहीं ले सकता। हाँ, फिर मैं वहाँ पर चला गया, मैंने बदतमीजी की, चीखा चिल्लाया, थोड़ी धमकियाँ दी, और मैंने कहा मैं तुम्हारे कपड़े भी उतार दूंगा, फिर तुमको ये मजाक लगेगा क्या? अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो लगता है थोड़ा ज्यादा हो गया था। गुस्से में आदमी कुछ भी कह देता है, और फिर शायद मुझे जेल हो गई थी।
शायद जेल हो गई थी?
एक दिन के लिए जेल हो गई।
अच्छा, एक दिन के लिए?
मैं शूटिंग कर रहा था और वहाँ पे पुलिस आई, वहाँ पर बैठ गई, बड़े प्यार से बैठी, और कहा आपसे कुछ सवाल जवाब करने। तो मैंने कहा पैकअप हुआ, तो मैंने कहा कि बोलिए, आप मेरी गाड़ी में बैठकर सवाल कर सकते हैं, मैं हमेशा अज्यूम करता हूँ जो भी मुझसे मिलने आता है मेरा फैन ही होगा। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, आपको हमारी गाड़ी में बैठना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं यार, कोई बात नहीं, हम एक जैसे ही हैं, साथ में बैठ कर चले के आ जाओ। फिर वो नहीं माने, मुझे पुलिस स्टेशन लेकर, वहाँ जाते ही मैंने एक छोटी सी जेल देखी, बड़ा ही गंदा माहौल था, बदबू थी, बहुत गंदगी थी, और वो जेल देखते ही मैं एकदम मैं माफ़ी मांगने लग गया। मैंने कहा मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती होगी, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा, आई एम रियली सॉरी। और फिर शाम को मुझे बेल भी मिल गई, मैं बाहर आया, बाहर आके मैंने सबको ये मैंने बोल दिया कि मैंने हैंडल कर लिया यार, मैंने कहा यहाँ पर मुझे कोई नहीं रख सकता एक मिनट के लिए भी। और मैं आज तक यही कहानी बताता हूँ, ये पहली बार है जब मैं ये सच्ची सच्ची कहानी बता रहा हूँ, बाकी सबको मैं बताता हूँ किसी गैंग के किसी भी बंदे को जेल में नहीं रख सकते।
लेकिन जो मैंने सुना था या पढ़ा था कि उन लोगों ने आपको शायद एक फोन कॉल करने की इजाजत दी थी।
हाँ, मैंने कॉल की थी ना।
किसको फोन किया था आपने?
उसी जर्नलिस्ट को जिसने ये स्टोरी लिखी थी। मैंने कॉल किया और उसको कहा कि अब मैं जेल में हूँ, और वो पुलिस वाले ने मुझे बहुत डराया था, तो जेल का डर निकल गया था। मैंने कहा मेरे दिल से तो डर निकल गया, अब तुम्हारे डरने की बारी है। फिर मैं उनके घर भी पहुंच गया, वहां पर पुलिस तैनात थी जो मुझसे ही उसे बचाने के लिए वहां तैनात थी, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि मैं ही वो हूँ। सबने बोला हाय शाहरुख भाई कैसे हो, मैंने कहा बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं वहां पर गया और मैंने उनमें से एक पुलिस वाले से माचिस मांगी, फिर मैंने उसी बंदे की खिड़की के बाहर जाके सिगरेट जलाई और उसको ऐसा घूर कर देखा और चला गया। वैसे इन मामलों में मैं बहुत मैच्योर हूँ। हाँ,
अब आप काफी मैच्योर हो चुके हैं, अब ऐसा नहीं होगा ना?
बिल होना तो नहीं।
लेकिन अब आपकी रिएक्शन अलग होगी ना?
Yes, हाँ बिल्कुल अलग होगा, और होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और होगा भी,
क्योंकि अब आपको सोचना होगा अपने परिवार का, बच्चों का।
नहीं, इन लोगों को फर्क नहीं पड़ता। कभी कभी चीज़ें गलत हो जाती हैं, और मुझे जो है हर चीज़ को थोड़ा शांति से देखना चाहिए, और मैं पिछले 5 साल से दवाइयाँ भी ले रहा हूँ। नहीं, मैं सचमुच अब और शांत हो गया हूँ, और अब मैं गुस्सा नहीं करता, क्योंकि ये अच्छा नहीं
है। दवाइयों के बारे में आप मजाक कर रहे थे।
हाँ,
लेकिन मैं दवाइयाँ लेता हूँ।
वो आपकी शक्ल से दिखता है। अभी हाल ही में मैंने क्रिकेट स्टेडियम में भी झगड़ा कर लिया और इस बारे में मैं झूठ बोल देता लेकिन किसी ने उसका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया।
क्रिकेट आपकी एक क्रिकेट टीम है क्या, ये सही है?
जी हाँ, मैं मेरा सपना था बचपन का कि मैं क्रिकेटर बनूं। क्रिकेटर बन नहीं सका तो मैंने क्रिकेट की टीम ही खरीद ली कि शायद क्रिकेट टीम ओन करने से मेरा सपना पूरा हो जाएगा। लेकिन सचमुच मैं स्पोर्ट्समैन बनना चाहता था।
आप कौन सा खेल खेलते थे?
मैं तीन खेल खेलता था। मैं फील्ड हॉकी खेलता था जो आइस हॉकी नहीं है, फुटबॉल खेलता था जो यहाँ पर सॉकर कहते हैं जिसको, और ऑफकोर्स क्रिकेट, हर हिंदुस्तानी क्रिकेट खेलता है।
पुरानी इमारतों और मुंबई की सड़कों पर ट्रैफिक के दृश्य। लेटमैन खेल के मैदान में आते हैं जहां कुछ नौजवान खिलाड़ी क्रिकेट खेल रहे हैं।
Hi, how are you? Good morning. Hello.
वहां लेटमैन की मुलाकात होती है अंडर 19 क्रिकेट चैंपियन पृथ्वी शॉ से।
Hi, मैं डेव।
हेलो सर,
आपका नाम?
पृथ्वी शॉ।
मिलकर अच्छा लगा।
आपसे मिलकर अच्छा लगा।
आप क्रिकेट खेलते हैं?
हाँ।
कब से क्रिकेट खेल रहे हैं?
12-13 साल से।
सुना है आप बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, सही है क्या?
क्रिकेट की वीडियो फुटेज और फोटोज दिखती है।
आप एक अच्छे बैट्समैन हैं।
सही कहा।
और आपने एक रिकॉर्ड भी बनाया है।
546 रन वर्ल्ड रिकॉर्ड था एक इनिंग का।
ऐसा कभी बेसबॉल में नहीं हुआ है। एक क्रिकेट मैच में मैंने देखा कि फील्डर्स ग्लव्स नहीं पहनते,
हाँ,
सिवाय उसके जो पीछे खड़ा है
विकेट कीपर।
हाँ, वो विकेट कीपर,
हाँ, वो विकेट कीपर है।
पृथ्वी जोरदार शॉट लगाते हैं।
अरे वाह,
Oh my goodness.
ठीक है, अब मैं खेलता हूँ, पर तेजी से बॉल मत फेंकना।
मैं बॉलिंग करता हूँ।
कल रात मैंने किसी को
बैटिंग पोजीशन
इस तरह बैटिंग करते देखा, लेकिन एक बॉल सीधे उसे गलत जगह पर लग गया, तो मुझे बाउंस के बाद उसे मारना है ना?
हाँ, एक बाउंस के बाद।
ठीक है, लगनी नहीं चाहिए, ठीक से फेंकना।
लेटमैन क्रिकेट बैट को बेसबॉल बैट जैसे पकड़ते और घुमाते हैं। बैट बॉल को लगता है, बॉल पीछे जाती है।
ओके, अब मैं समझ गया।
लेटमैन और बैटिंग करना चाहते हैं।
क्या ख्याल है, ठीक से मारा ना? कोई रन बने?
आप आउट हो गए सर।
आउट हूँ।
तेजी से घुमा के मारना चाहिए।
ठीक है यार, दो ही बॉल खेले।
उन्होंने एक अच्छा शॉट मारा।
अच्छा शॉट था।
बॉल विकेट को लगती है और बेल्स गिर जाती है।
आपने तो उसे तोड़ दिया।
आप आउट हो गए।
नहीं नहीं, चलिए वापस जाओ, फिर से फेंको। मैं इसे वापस डालूंगा, मैं आउट नहीं हूँ, फिर से जाओ।
आप आउट हैं।
चलो डंडे को वापस लगाओ।
इसमें स्ट्राइक वन।
मुझे पांच बॉल और दो।
पांच बॉल और नहीं होते बेसबॉल के। चलो आप आउट हैं।
बैकग्राउंड में मुंबई की इमारतें हैं, अब न्यूयॉर्क स्टेट।
मैं अब आपसे एक सवाल पूछूंगा, आप जवाब दे ना दे, मुझे तो मेरे पैसे मिल जाएंगे। आपके देश के लोग हमारे देश के प्रेसिडेंट के बारे में सचमुच क्या सोचते हैं?
हमको लगता है अमेरिका सुपर पावर है, और
यकीन मानिए मैं जानता हूं आप जो बोलते हैं वो कंट्रोवर्सी बन जाती है, तो अगर आप ना चाहें तो जवाब ना दें।
तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं बहुत समझदारी से सवाल का जवाब दूँ कि मुझे कोई मुसीबत ना हो। हमें इंडिया में सब लोगों को लगता है कि अमेरिका सुपर पावर है, यहाँ पे हम कामकाज करने के लिए आना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, बहुत अच्छी जगह है, बहुत सुपीरियर जगह है। बहुत सालों से हमें लगता है कि आप लोग बहुत उच्च कोटि के हो, लेकिन अब ऐसा लगने लगा है कि आप कुछ खास नहीं हो, ठीक ठाक हो।
लेटमैन हंसकर खान और दर्शकों की तरफ देखते हैं।
भाई जैसी करनी वैसी भरनी, नहीं?
हाँ हो सकता है। मैं वहाँ के लोगों के जोश से प्रभावित हूँ, और ये सच है कि वहाँ की जनसंख्या में दुनिया भर से ज्यादा नौजवान लोग हैं, और इसलिए ये नौजवानों की जनसंख्या एक बहुत बड़ा एसेट है आपके देश के लिए।
जी हाँ, दुनिया भर में सबसे जवान देश है हिंदुस्तान। 65% भारतीय मेरे ख्याल से 35 साल से कम उम्र के हैं लगभग, और ये जनशक्ति के तौर पर बहुत बड़ी ताकत है। सब लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, सबसे ज्यादा अंग्रेजी बोलने वाला देश है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही सबसे बड़ी बात है, लेकिन इसकी वजह से हम ग्लोबली कनेक्टेड हैं, और हो सकता है 5-6 साल बाद अमेरिका में एक इंडियन प्रेसिडेंट हो।
मगर उसके लिए अभी 5-6 सालों का इंतजार करना होगा। سماج کی مدد کے طور پر میں کچھ آپ سے پوچھنا چاہتا تھا. جہاں تک میں آپ کے دیش کو سمجھتا ہوں, آپ کے دیش میں سادھن سمپتی کی ویوستھا تو ہے, پھر بھی مدد کی ضرورت تو ہے جیسے کہ کئی دیشوں کو ہوتی ہے. آپ اپنے نجی طور پر سماج کی مدد کے لیے کیا کیا کام کرتے ہیں؟
میری زندگی عورتوں سے بہت پربھاوت رہی ہے, چاہے وہ میری ماں ہوں, میری بہن, میری بیوی اور اب میری بیٹی, اور وہ ایکٹریسز بھی جن کے ساتھ میں نے کام کیا ہے. اس لیے میں زندگی میں جو بھی سمجھا ہوں وہ عورتوں کے نظریے سے ہی دیکھا ہے, ان لوگوں کے نظریے سے, یا تو جنہوں نے مجھے پال پوس کر بڑا کیا ہے یا چاروں طرف میرے ہمیشہ رہتی ہیں. تو میں عورتوں کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں. ہماری ایک چھوٹی سی آرگنائزیشن ہے, میر فاؤنڈیشن, جہاں ہم عورتوں کو پناہ دیتے ہیں, ان کا خیال رکھتے ہیں, ان کے لیے قانونی لڑائی لڑتے ہیں, ان مہیلاؤں کو جو ایسڈ اٹیک کے حادثے سے گزری ہیں. تو میرے پاس ایک ٹیم ہے اور ہم ان لوگوں سے جڑتے ہیں جو کہیں بھی کسی بھی طرح سے دیش میں ایسڈ اٹیک وکٹمز کے لیے کچھ کام کر رہے ہیں. یہ ایک طرح کا نیٹ ورک جیسا ہم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ہم سب کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں, اور ہم کوشش کرتے ہیں ان کا اسکن ٹریٹمنٹ ہو سکے, سرجریز, نوکریاں ملیں انہیں. اور ہمیں یہ بھی لگتا ہے کہ قانون تھوڑا سخت ہونا چاہیے, اور اس کے لیے ہم لوگ اتھارٹی سے کنیکٹ کریں, پریزنٹیشن بنائیں. بہت سے لوگ, بہت سی آرگنائزیشن اس پر کام کر رہی ہیں, اور امید ہے سب اچھا ہوگا.
ممبئی شہر کے درشیہ رات کو بازار میں بھیڑ بھاڑ اور بہت رونق ہے. لوگوں کے مسکراتے چہرے دکھتے ہیں, جھولے پر ہنستے ہوئے بچے جھول رہے ہیں, چوپاٹی پر گپ شپ کرتے لڑکے اور لڑکیاں, ایک آدمی چپ چاپ بیٹھا ہے. نیو یارک سٹیج پر
میں سن رہا تھا کہ آپ کچھ لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ آپ کو ڈانس نہیں آتا. آپ نے بہت کوشش کی, کوریوگرافرز کے ساتھ بہت محنت کری, لیکن آپ سے ہو نہیں سکا, اور ڈانس آپ کے بس کی بات نہیں ہے, اور پھر آپ بس کچھ اس طرح سے کر دیتے تھے, اور پھر مجھے لگا.
ہاتھ آگے پھیلاتے ہیں,
کچھ ایسے ہی نا, لگ بھگ. اور پھر
مسکراتے ہوئے خان کافی کی ایک چسکی لیتے ہیں.
اور پھر میں نے آپ کی فلمیں دیکھی جس میں آپ بھاگ رہے ہیں, اچھل رہے ہیں, ناچ رہے ہیں, کود رہے ہیں, بالکل ایک پروفیشنل ڈانسر کی طرح. اور آخر تو ایسا کیا ہوا جس نے آپ کو اس سے لے کر فریڈ ایسٹیئر بنا دیا؟
مجھے ابھی بھی نہیں لگتا کہ میں اچھا ناچ سکتا ہوں.
نہیں, یہ صحیح نہیں ہے, آپ ڈانس کر سکتے ہیں.
خان ہنستے ہوئے ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپاتے ہیں.
جب میری پہلی فلم ریلیز ہوئی تھی تو کسی کرٹک نے لکھا تھا,
یہ جو بالوں والا لڑکا ہے
وہ وچم کال ہز ہیئر, شاید انہیں میرا نام پتہ نہیں تھا یا جاننا نہیں چاہتے تھے.
وچم کال ہز ہیئر ہیز worked his way into the hearts of Indian audience by sliding on an ice slab down the stairs, somersaulting, cartwheeling, eyes trembling, lips trembling, visceral, maniacal energy, but still clawishly boyish.
آپ ہی سب رٹ کر آئے ہیں.
ہاں بالکل, اس شو کے لیے, ادروائز مجھے نہیں پتا تھا. کیونکہ جب میں یہاں آ رہا تھا, اور آپ کے شو کا نام ہے, ہمارے اگلے اتھیتی کو کوئی پریچے کی ضرورت نہیں ہے, اور مجھ سے ہر کوئی یہاں پوچھتا رہا آپ کیسے چاہیں گے ڈیو آپ کا پریچے دے شو پر. تو میں نے سوچا اگر اس شو پر پریچے کی ضرورت نہیں ہے تو میرے پریچے کے لیے کیوں پوچھ رہے ہیں.
بالکل,
تو میں یہ پریچے آپ کے لیے لکھ کر لایا.
تھینک یو.
لیکن جن فلموں میں آپ نے ڈانس کیا ہے آپ واقعی بہت اچھے لگ رہے ہیں.
سچ تو یہ ہے کہ میں ٹرینڈ ڈانسر نہیں ہوں, لیکن ہر ہندوستانی کی طرح مجھے ناچنے کا بہت شوق ہے. ہم ہندوستانیوں کو ناچنے گانے کا بہت شوق ہے, موقع ملتے ہی ہم ناچنے لگتے ہیں, ناچنے لگتے ہیں, ناچنے لگتے ہیں ایسے.
دیکھیے, میں کوئی زبردستی تو نہیں کرنا چاہتا, اور پتہ نہیں یہ ہال ہمارے پاس کب تک ہے, تو کیا آپ جلدی سے کچھ ہو جائیں؟
دونوں کھڑے ہو جاتے ہیں, دونوں ڈانس سٹیپس کرنے لگتے ہیں. اپنے ہاتھ اٹھا کر خان پیچھے جھکتے ہیں, لیٹرمین آگے اور پیچھے جا کر ڈانس کے سٹیپس کرتے ہیں.
ڈیو میں آپ کو,
لیٹرمین نہیں رکتے.
ڈیو, یہ شکاگو فلم کا سیٹ نہیں ہے, मैं आपको कुछ इंडियन स्टेप सिखाता हूँ आपको।
मगर मुझे बस सिर्फ इतना सा डांस आता है, थोड़ा सा ऐसे, थोड़ा सा ऐसे।
खान उनके डांस की नकल करते हैं।
आइए मैं आपको कुछ इंडियन स्टेप सिखा देता हूँ।
जरूर,
हाँ, पता नहीं ये कभी भी काम आ सकता है। बहुत आसान है, यूं फिर यूं।
अरे खान हिप थ्रस्ट करते हैं जिसे देखकर लेटमैन दूर चले जाते हैं।
अरे
मैं वो नहीं करूंगा, कुछ और सिखा दो।
अगली बार आप इंडिया आओगे ना, सब कहेंगे
दे।
खान धीरे से हिप थ्रस्ट करते हैं, लेटमैन कोशिश करते हैं, नहीं कर पाते और अपनी बाहें झुलाते हैं।
यूं
खान अपनी बाहें फैलाकर अपना सिग्नेचर स्टेप करते हैं, लेटमैन भी वैसा ही करते हैं। अब बॉलीवुड स्टाइल डांसर्स डांस कर रहे हैं और अब कुछ लोग मूवी की टिकट्स और पॉपकॉर्न ले रहे हैं। खान के घर डिनर टेबल पर।
आप इनकी सारी फिल्में देखती हैं?
हाँ बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे इनकी फिल्में देखना पसंद है। ये क्या करते हैं?
और जब आपको वाकई कुछ पसंद आता है तो आप इन्हें यकीन कैसे दिलाती हैं?
इनको आमतौर पर मेरी फिल्में पसंद नहीं आती हैं।
नहीं,
हाँ, कुछ ज्यादा ही सच बोलती हैं।
मुंबई शहर में रंग बिरंगे आकाशदीप, मुखौटे, हैट्स और अम्ब्रेलाज लटके हैं। खाने पीने के ठेलों पर लोगों की भीड़ है। अब न्यूयॉर्क स्टेज का दृश्य।
अपने ऐसे हर इंटरव्यू के बाद मैं खुद से कहता हूँ कि ये कितने स्मार्ट हैं, कितने अच्छे शख्स हैं जिसे मैं कुछ सीख सकता हूँ, और उन नामों में शायद आपका नाम सबसे ऊपर होगा।
दर्शक खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं। लेटमैन और खान हाथ मिलाते हैं और गले लगते हैं।
बहुत मजा आया।
क्रेडिट्स उभरने लगते हैं। एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स क्रिस केचन डिलारोसा, क्रिस्टोफर कॉलिंस, लिडिया टेनेग्लिया, टॉम कीनी, मैरी बाकले और सैंड्रा ज़्वेग। मेजबान डेविड लेटमैन। डायरेक्टर माइकल स्टीड। मेहमान शाहरुख खान। म्यूजिक पॉल शेफर। अन्य क्रेडिट्स उभरते हैं। कॉपीराइट 2019 नेटफ्लिक्स वर्ल्ड वाइड एंटरटेनमेंट LLC। लोगोस 0.0 एंड वर्ल्ड वाइड पैंस इनकॉर्पोरेटेड।
लाल रंग का N अक्षर रंगों के स्पेक्ट्रम में प्रकट होता है।